हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सुनैना के ऑफिस जाने के बाद आदित्य अकेला ही अपने कमरे में रह गया और कंपनी की सारी ग्रोथ और स्टैटिस्टिक्स चेक कर रहा था। भले ही उसने सुनैना को कंपनी का ओनर बना दिया था, लेकिन बाकी सब कुछ अभी भी वो खुद देखता था, बिल्कुल पहले की तरह। वो सुनैना का कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, लेकिन उस पर अभी ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता था। गीता आदित्य के बारे में सब कुछ जानती थी। उसे ये भी पता था कि काम करते वक्त आदित्य को ब्लैक कॉफी पीना पसंद है, इसलिए वो उसके लिए बिना कहे ही ब्लैक कॉफी बनाकर ले आई और साइड में रखकर चली गई। आदित्य अपनी कॉफी पीते हुए लैपटॉप की स्क्रीन पर ध्यान लगाए हुए था। ये राठौर इंडस्ट्रीज काफी अच्छा कर रही है और पिछले 3 महीने में इनकी ग्रोथ भी हमसे काफी ज्यादा है। हम पहले से इनसे काफी आगे थे, इसलिए अभी भी नंबर 1 बने हुए हैं, लेकिन हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस बारे में अपने इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स से बात करता हूँ, आदित्य ने अपने आप से ही बात करते हुए कहा और कॉफी की एक और घोंट ली। इसी में व्यस्त था कि कुछ देर बाद उसका मोबाइल फोन बजने लगा। उसका ध्यान एकदम से उसकी ओर गया, लेकिन उसने स्क्रीन पर देखा कि कोई अननोन नंबर है, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन फिर से उसी नंबर से कॉल आई। तब आदित्य को लगा कि शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो किसी जानने वाले की। आदित्य वैसे भी ज्यादा लोगों के नंबर अपने मोबाइल में सेव करके नहीं रखता था, इसलिए दूसरी कॉल पर उसने वो कॉल रिसीव कर ली। हेलो, हु इज दिस? आदित्य ने लापरवाही से पूछा। आदित्य, मैं, आवाज़ तो अच्छी तरह से पहचानते ही होंगे मेरी, या फिर मुझे नाम बताने की जरूरत है? और देखो, कॉल डिस्कनेक्ट मत करना, मुझे तुमसे बहुत ही अर्जेंट मिलना है। बताओ, कहाँ मिल सकते हैं? दूसरी तरफ से आदित्य की जानी पहचानी आवाज आई। वो एकदम सीधा होकर बैठ गया, क्योंकि उसे उस आदमी की कॉल आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, वो भी अपने नंबर पर। इसलिए उसने अपने कान से मोबाइल फोन हटाकर अपने चेहरे के सामने किया और स्क्रीन पर चेक किया। वो नंबर सच में अनजान ही था, लेकिन वो आवाज नहीं। इसलिए आदित्य ने कहा, ऐसा भी क्या अर्जेंट हो सकता है एकदम से, वो भी इतने दिनों के बाद? आदित्य, प्लीज, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन ये नाराजगी तुम बाद में भी दिखा सकते हो, अभी जो बात है वो बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज आई। इतनी ही जरूरी है तो यहाँ कॉल पर ही बता दो, मिलना क्यों जरूरी है? आदित्य ने बेरुखी से कहा। वो उससे मिलना अवॉइड भी कर रहा था जानबूझकर। मैं कॉल पर नहीं बता सकता, और अगर बता भी दूंगा तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें पूरी बात समझ में आ जाए, इसलिए प्लीज ये बेकार की जिद और बहस छोड़ो और बताओ कहाँ पर मिल सकते हो अभी? दूसरी तरफ से बोल रहे उस आदमी ने लगभग रिक्वेस्ट करते हुए और आदित्य को समझाते हुए कहा, अभी तो मैं घर पर ही हूँ, एक काम करो, मेरे घर का एड्रेस तो तुम्हें काफी अच्छे से ही पता है, इसलिए आ जाओ, यही मिलते हैं। आदित्य ने उसे एक तरह से ताना मारते हुए कहा। उसे ये भी लगा था कि वो उससे मिलने शायद उसके घर पर ना आए और फिर ये मीटिंग कैंसिल हो जाए। मुझे तो तुम्हारे घर का एड्रेस पता है, लेकिन तुम ही अपने घर पर नहीं मिलते। ये बताऊँ, मेरे आने से पहले कहीं चले तो नहीं जाओगे ना आदित्य? देखो, ये कोई खेल खेलने का वक्त नहीं है, मैं सच में बहुत टेंशन में हूँ और तुम्हें ये बात पता चलना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ से उस आदमी ने काफी टेंशन में कहा। अच्छा, इसका मतलब हम अभी भी दोस्त हैं पहले की तरह, और इसीलिए तो मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो? आदित्य ने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ तंजिया लहजे में बोला। आदित्य, मेरे लिए तुम हमेशा ही मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे, बाकी तुम्हारी तरफ का मुझे नहीं पता कि इतने दिनों में क्या बदल गया है और क्या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा वही कॉलेज वाला बेस्ट फ्रेंड अनय हूँ, अनय ने एकदम मजबूती से कहा। अनय की ये बात सुनकर आदित्य थोड़ा इमोशनल हो गया और उसने उसे जल्दी आने के लिए बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। आदित्य उससे मिलना तो चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका सामना नहीं करना चाहता था। उसे लगता था कि इतने दिनों बाद उन दोनों के बीच होने वाली ये मीटिंग बहुत ही ऑकवर्ड होने वाली है। इसके साथ ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनय उसे ऐसा भी क्या बताने वाला है जो इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत ही परेशान साउंड कर रहा था कॉल पर। आदित्य को उसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उसके जाने के बाद से आदित्य के उसके सारे कनेक्शन ही टूट गए थे। फिर आदित्य अपनी परेशानियों और प्रॉब्लम्स में इतना बिजी हो गया कि उसे इन सब के बारे में टाइम ही नहीं मिला। और अभी कुछ दिनों पहले जब वो लंदन जाने वाला था, उसके बाद ही सुनैना ने उसे इस बारे में बताया था, तब आदित्य की पिछली यादें फिर से ताज़ा हो गईं और उसे ये बात सोचकर बुरा लगा कि अनय अगर उसके बारे में सब कुछ जानता है और उस पर नज़र रखता है तो फिर इतने दिनों से उसके सामने क्यों नहीं आया। लगभग एक घंटे बाद आदित्य के विला की डोरबेल रिंग हुई। आदित्य एक्साइटेड होकर अपने स्टडी रूम से बाहर निकल आया। वो स्टडी रूम में अनय के साथ मीटिंग नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके सामने खुद को ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो नीचे हॉल में भी नहीं गया और स्टडी रूम से निकलकर एकदम धीरे कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। गीता ने दरवाज़ा खोला। वो अनय को एकदम अच्छी तरह से तो नहीं पहचानती थी, इसलिए उसने उससे पूछा, जी आप कौन? अनय, आदित्य का दोस्त, घर पर है वो? अनय ने अपना परिचय देते हुए पूछा। गीता को उसकी बात पर यकीन ना करने का कोई भी रीजन नहीं था, इसलिए उसने उसे घर में वेलकम किया और फिर आदित्य के कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो वहाँ ऊपर अपने कमरे में है। ओके थैंक्स, बोलता हुआ अनय तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। फिर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ वो पहले फ्लोर पर आया। उसे सिर्फ एक कमरे का ही दरवाज़ा खुला हुआ नजर आया तो वो उस तरफ ही बढ़ गया। उसने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो आदित्य उसे वहां पर कमरे में इधर उधर टहलते हुए नजर आया। वो उसे सामने से देखकर कुछ पल के लिए अपनी जगह पर ही जम गया और कुछ भी बोल नहीं पाया। पीछे मुड़कर देखते हुए आदित्य ने जैसे ही दरवाजे पर खड़े अनय को नोटिस किया, वो बोला, आ गए तुम? आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। आदित्य ने अपने हाथ पीछे की तरफ बांध कर एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ प्रोफेशनली उसका वेलकम किया, लेकिन अनय उसकी तरह नहीं था। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। उसके मुंह से आदित्य का नाम निकला। आह आदित्य, नाम बताए मुझे अपना, लेकिन तुम? आदित्य अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अनय आगे आकर उसके गले लग गया। उसके गले लगते ही अनय की आंखों में भरे आंसू निकल कर उसके गालों पर गिरने लगे। आदित्य को भी शायद इस वक्त अपने दोस्त के इस वार्म हग की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो चाहे जितना भी कोल्ड बिहेवियर कर ले, ऊपर से लेकर अंदर से चाहकर भी वो उसे कुछ से दूर नहीं कर पाया। आखिरकार उसने भी अनय की पीठ पर अपना हाथ रखते हुए उसे गले से लगा लिया और बोला, ये इस तरह से गले लगाने में इतना टाइम लगा दिया अनय, सॉरी यार। अनय आदित्य से दूर होकर अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोला, वापस क्यों नहीं आया तू कॉलेज? नहीं आ पाया मैं, चाहकर भी नहीं आ पाया। एक साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी कि मैं कभी उनमें से निकल ही नहीं पाया, लेकिन सच कहूँ तो हर रोज तेरी याद आती थी और तुझसे बात करने का मन भी होता था। लेकिन अनय पूरी बात बताते बताते रुक गया। लेकिन क्या, ऐसा भी क्या हो गया था जो तुम मुझे एक कॉल भी नहीं कर पाए?
तुम्हारे पापा की डेथ के बारे में न्यूज़ में देखा था और उसके बाद मैंने तुम्हें बहुत कॉल किया, लेकिन उस वक्त तुमने मेरा एक भी कॉल रिसीव नहीं किया और मैं चाहकर भी यहाँ शहर वापस नहीं आ पाया। तुम्हें पता है ना, मैं अपने शहर वापस चला गया था, अनय ने उसे पूरी बात बताते हुए कहा। अच्छा हाँ, वो उस टाइम सच में मुझे कुछ भी याद नहीं था और मैं किसी से भी बात नहीं करता था। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था डैड की डेथ के बाद से। मैंने अपने आप को सबसे डिस्कनेक्ट कर लिया था और उस वक्त तो मुझे अपना भी होश नहीं रहता था। लेकिन आदित्य कुछ बोलते बोलते रुक गया। अनय उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। क्रमशः